ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री सदस्य देशों तथा द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाए जाने की घोषणा करेंगे। ये घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दूरदर्शी रोडमैप है। इसको अपनाए जाने के साथ एशिया प्रशांत नागरिक उड्डयन क्षेत्र सतत विकास और सुरक्षा को और आगे बढ़ाएगा। इससे पहले श्री मोदी ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। नागरिक विमानन मंत्री रामोन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। श्री नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर में वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण के दौरान हेलीकॉप्टरों प्रचंड, सारंग, सूर्य किरण और लड़ाकू विमान तेजस के करतब देखे। श्री सिंह ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य देश की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना तथा प्रतिभागी देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि तरंग शक्ति मित्र देशों के बीच सहयोग तथा परस्पर विश्वास बढ़ाने का माध्यम है। रक्षा मंत्री ने देश की बढ़ती सैन्य ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन अब 90 देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैविक क्रांति के युग की ओर अग्रसर है। आज नई दिल्ली में वैश्विक जैविक भारत सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिस तरह एक समय में पश्चिमी देशों पर सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव था, उसी तरह आज भारत को भी जैविक क्रांति से गुजरना पड़ रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नए कामकाज शुरू करने वाले संस्थानों, अनुसंधानकर्ताओं, जैविक समूहों, निवेशकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नीति निर्धारकों के लिए ये एक मंच की भूमिका निभाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार महिलाओं के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सिलाई मशीनें वितरित करने के बाद उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर की 2 लाख से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 60% महिलाओं ने बैंक खाते खुलवाए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का विस्तार करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 6 करोड़ लोगों को योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितम्बर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था। इस चरण में 1 अक्टूबर को विधानसभा के 40 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली में एम्स में निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सीताराम येचुरी एक छात्र नेता और बाद में राष्ट्रीय राजनीति और सांसद के रूप में एक प्रबल आवाज थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सवेदी सूचकांक आज 1439 अंक बढ़कर 82,962 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 470 अंक की बढ़त के साथ 25,388 पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक से लौटे भारतीय दल से मुलाकात की। श्री मोदी ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कपिल परमार के पदक पर हस्ताक्षर किए। चीन में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में वर्तमान चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हरा दिया है। टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार 4थी जीत है। भारत सेमीफाइनल में पहले ही जगह पक्की कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।